नमस्कार, द प्रिंट पॉड के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ रेवती करण। पत्रकार शुभांगी मिश्रा ने एक रिपोर्ट लिखी है जिसका शीर्षक है, पंजाब के कुएं में मिले उन सिपाहियों के अवशेष जिन्हें 1857 में 10-10 के समूहों में मार दिया गया था। प्रस्तुत है इस रिपोर्ट का पॉडकास्ट वर्जन। 1 अगस्त 1857 का दिन था जब ईद अल अधा मनाई जा रही थी। इसी दिन को अमृतसर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर फ्रेडरिक कूपर ने अपने मुस्लिम घुड़सवारों को वहां दूर भेजने के अच्छे बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। अब वह आराम से हिंदुस्तानी सिपाहियों को मौत की सजा दे सकते थे क्योंकि कोई आपत्ति जताने वाला नहीं था। जहां तक कूपर की बात है तो उनकी नज़र में 26वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के ये विद्रोही इसी सजा के हकदार थे क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले ही अपने कमांडिंग ऑफिसर को मार डाला था। कूपर ने 1858 में अपनी किताब द क्राइसिस इन द पंजाब फ्रॉम 10th of May अंटिल द फॉल ऑफ दिल्ली में लिखा है, सिपाहियों को 10-10 के समूहों में बुलाया गया, उनके नाम लिए गए, एक साथ कतारों में खड़ा किया गया और फिर मौत के घाट उतार दिया गया। इसे अंजाम देने के लिए फायरिंग पार्टी पहले से तैयार थी। कूपर के लिए यह सब एक तमाशा था। अब इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और फॉरेंसिक वैज्ञानिकों के लगभग 1 दशक लंबे प्रयासों से 1857 के मारे गए इन बागियों सिपाहियों को दफन किए जाने वाले स्थान का पता लग पाया है। यह खोज अजनाला के स्थानीय लोगों और इतिहासकारों की तरफ से की गई इस मांग को पूरा करने में मदद हो सकती है कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपना बलिदान देने वाले सिपाहियों की याद में एक स्मारक बनाया जाए। सबसे पहले 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से स्थापित बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में पूर्वी भारत के विभिन्न हिस्सों से सैनिकों को लिया गया था। इसके सैनिक मुख्य रूप से उच्च जाति के थे जो ब्राह्मण, राजपूत और बंगाल, अवध और बिहार के भूमिहार होते थे। 1857 की शुरुआत तक बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 74 रेजिमेंट थी जिनमें से प्रत्येक में लगभग 800 सिपाही, 120 हवलदार और नायक, 20 सूबेदार और जमादार होते थे और शीर्ष पर 2 ब्रिटिश सार्जेंट और 26 ब्रिटिश कमीशन अधिकारी थे। 1.5 सदी से अधिक समय बाद 2014 में एक शौकिया पुरातत्वविद सुरेंद्र कोचर की अगुवाई में ग्रामीणों की एक टीम ने अमृतसर के बाहरी क्षेत्र अजनाला में एक गुरुद्वारे के नीचे एक कुएं से 200 से अधिक मृत पुरुषों के कंकाल के अवशेषों का पता लगाया। इसे लेकर एक रहस्य बना रहा है। कोचर जहां 1857 के नरसंहार को लेकर बनी किंवदंती की जड़ें तलाश रहे थे, कुछ सालों में कंकालों को लेकर कुछ नई थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि कंकाल विभाजन के समय के हैं या मारे गए ब्रिटिश पुरुषों और महिलाओं के हैं। हालांकि विज्ञान ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। इसी साल 28 अप्रैल को फ्रंटियर्स इन जेनेटिक्स मैगजीन में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक डीएनए और आइसोटोप विश्लेषण ने इन कंकालों के अवशेष और अगस्त 1857 में मौत के घाट उतारे गए सिपाहियों के बीच जुड़ी कड़ी को स्थापित किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के मानव विज्ञानी जे एस सहरावत द्वारा हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, लखनऊ स्थित बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सहयोग से किया अध्ययन बताता है कि कंकालों का डीएनए अनुक्रम इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि करता है कि 26वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में इंडो गैंगेटिक मैदानों के लोग शामिल थे। द प्रिंट की मोहना बसो ने एक अलग लेख में बताया है कि कैसे फॉरेंसिक वैज्ञानिकों के काम ने एक ऐसे नरसंहार के बारे में सच्चाई को सामने लाने में मदद की है जिसे ऐतिहासिक दृष्टि से व्यापक स्तर पर नज़रअंदाज कर दिया गया था। हत्याकांड से महीनों पहले ही पंजाब में माहौल बिगड़ गया था। 13 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की खबर पंजाब पहुँचते ही एहतियाती तौर पर 26 नेटिव इन्फेंट्री को निशस्त्र कर दिया गया था। इसके बावजूद रेजिमेंट 30 जुलाई 1857 को अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर स्पेंसर को मार डालने में सफल रही। कूपर के मुताबिक सिपाहियों के बीच क्रांति की यह मशाल प्रकाश सिंह नामक एक सिपाही ने जलाई थी जो एकदम निडर भाव के साथ अपने कैंप से बाहर निकलकर तलवार लहरा रहा था और चिल्ला चिल्लाकर अपने साथियों से फिरंगियों को मारने के लिए कह रहा था। यद्यपि सिपाही धूल भरी आंधी की आड़ में भागने में सफल रहे लेकिन उन्हें केवल 1 दिन की ही आज़ादी मिली थी। 31 जुलाई को रेजिमेंट को रावी के तट पर देखा गया। कूपर के दावों के मुताबिक स्थानीय ग्रामीण अंग्रेजों की सहायता के लिए आगे आ गए। कूपर ने लिखा, रावी नदी के बाएं किनारे पर उन्हें बागी सिपाहियों को एक तहसीलदार का अप्रत्याशित विरोध झेलना पड़ा जिसे ग्रामीणों का समर्थन हासिल था। कूपर का दावा है कि रेजिमेंट के 150 सदस्य वहीं पर या तो डूब गए या फिर पुलिस और ग्रामीणों के साथ लड़ते हुए मारे गए। हालांकि 282 सिपाहियों को इस दौरान पकड़ लिया गया, जिनमें से 66 को अजनाला के 10 किलोमीटर दूर एक पुलिस थाने में रखा गया और अन्य को पास के टावर या गढ़ में ले जाया गया। आत्मसमर्पण करने वालों को उम्मीद थी कि वे कोर्ट मार्शल में बच सकते हैं, लेकिन जैसा कूपर ने काफ़ी रोचक होने के अंदाज में लिखा है कि अंग्रेज़ों की योजना तो कुछ और ही थी। सबसे पहले रस्सियां मंगाने का आदेश दिया गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर विद्रोहियों को पेड़ों की शाखाओं में फांसी पर लटकाया जा सके। कूपर के मुताबिक फिर पुलिस थाने के 100 गज के दायरे में स्थित कुएं को एक उपयुक्त विकल्प पाया गया। कूपर ने लिखा है, कुएं का वहां होना एक सुविधाजनक समाधान था क्योंकि साफ सफाई एक बड़ी बाधा थी कि मारे गए सैनिकों की लाशों को कैसे ठिकाने लगाया जाएगा। मुस्लिम घुड़सवारों के चले जाने के बाद कूपर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब विरोध करने या बगावत पर उतरने के लिए कोई भारतीय सैनिक नहीं था। फिर इस तमाशे को अंजाम देने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को बुलाया गया। सैनिकों को 10-10 के समूहों में गोली मारी गई थी, जैसा कि कूपर ने अपनी पुस्तक में लिखा है। उनमें से 237 को इसी तरह मौत के घाट उतारा गया। वहीं जिन अन्य 45 को अजनाला पुलिस थाने में रखा गया था, वो सब दम घुटने के कारण मारे गए। इन सभी को बिना किसी आदर के साथ एक ही जगह दफना दिया गया था। कूपर के मुताबिक 45 शव थकान, गर्मी और आंशिक तौर पर घुटन से दम तोड़ देने वालों को घसीटकर बाहर लाया गया और गांव के सफाई कर्मियों की सहायता से एक ही गड्ढे में दफना दिया गया। दांतों के अवशेषों के आइसोटोपिक डीएनए अध्ययन के जरिए शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि यहां 246 शव मिले हैं, जो कूपर द्वारा अपनी किताब में किए गए 282 की आंकड़े के दावे के काफ़ी करीब हैं। 2014 में यहां 90 खोपड़ियां, 170 जबड़े की हड्डियां, आभूषण और 1857 के पदक मिले थे। 1857 में ब्रिटिश कूपर के कृत्यों को जमकर सराह रहे थे और उनका तर्क था कि कैसे मौत की सजा विद्रोह की योजना बनाने वाले भारतीयों के लिए एक सबक साबित हुई है। पंजाब के चीफ कमांडर जॉन लॉरेंस ने 2 अगस्त 1857 को कूपर को लिखा, मुझे विश्वास है कि इन सिपाहियों के साथ जो किया गया वो दूसरों के लिए एक चेतावनी के तौर पर काम करेगा। उस समय पंजाब के न्यायिक आयुक्त रॉबर्ट मॉन्टगोमरी के लिए यह उपलब्धि और भी अधिक प्रशंसनीय थी। उन्होंने एक पत्र में लिखा, आपने जो किया है उसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं और आपने इसे बहुत बेहतर तरीके से किया है। 2022 के एक रिसर्च पेपर अजनाला नरसंहार में लंदन स्थित किंग्स कॉलेज के वॉर स्टडी विभाग के स्कॉलर मार्क कोंडोस लिखते हैं कि कूपर के सिपाहियों की महिलाओं और बच्चों की जान बख्शकर अपने कृत्यों को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की और साथ ही इसे 15 जुलाई 1857 को कानपुर यानी कि कानपुर में हुए नरसंहार की प्रतिक्रिया साबित किया, जिसमें भारतीयों ने यूरोपीय महिलाओं और बच्चों को मार डाला था। कुंडोस ने नोट किया कि अजनाला नरसंहार कोई एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि शाही शासन की हिंसा की व्यापक संस्कृति का एक हिस्सा भर थी, जो संकट के समय मजबूत कार्यकारी अधिकार और कठोर दंड के मानदंड अपनाने की जरूरत पर जोर देती थी। यद्यपि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को विद्रोही रेजिमेंट भंग कर दी गई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान यूनिट बची रही। 1861 में ऐसे ही 12 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को इलाहाबाद लेवी जैसी नई और आनंद फानन में गठित यूनिट के साथ जोड़ दिया गया। वहीं 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को गठन के लिए पंजाब से सैनिकों को लिया गया। जिन सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया उन्हें लखनऊ रेजिमेंट और लॉयल पूर्बिया रेजिमेंट जैसे सैन्य संरचनाओं में शामिल होने की अनुमति मिली। वे वफादार सैन्य बल आज भी आधुनिक भारतीय सैन्य संरचनाओं की विरासत में अंतर्निहित हैं और अपने पूर्ववर्ती यूनिटों का युद्धक सम्मान बरकरार रखते हैं। उदाहरण के तौर पर जाट रेजिमेंट की जड़ें ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता नेटिव मिलिशिया से जुड़ी हैं, जिसे 1861 में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 18वीं रेजिमेंट बनाया गया था। जाट रेजिमेंट की विरासत बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 43वीं और 65वीं रेजिमेंट से भी जुड़ी हैं। सिख रेजिमेंट का इतिहास मूलतः 1861 के बाद बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 14वीं, 15वीं और 45वीं रेजिमेंट से जुड़ा है। इसी तरह पंजाब रेजिमेंट की जड़ें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 20वीं रेजिमेंट से जुड़ी हैं। अजनाला में कुएं की खोज ने कालिया वाला कुआं या अश्वेतों के कुएं की किंवदंतियों की हकीकत को सामने ला दिया। मारे गए सैनिकों के शव जिस कुएं में फेंके गए थे वह अजनाला के सैन्य मैदान का हिस्सा बना और फिर वहां एक गुरुद्वारा बनाया गया। इसके बाद 28 फरवरी 2014 को सुरेंद्र कोचर ने साइट की पहचान की और गुरुद्वारा समिति के साथ तर्क वितर्क के बाद वहां खुदाई की। कुंडोस अपने पेपर में बताते हैं कि अजनाला के लोग इस जगह पर शहीद सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाना चाहते थे ताकि उनके बलिदान को सम्मानित किया जा सके, लेकिन उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। कुंडोस ने लिखा है, शवों का पता लगाने के बाद से कोचर, गुरुद्वारा समिति और अजनाला के अन्य लोगों ने राज्य और केंद्रीय प्रशासन दोनों के सामने स्मारक स्थल और संग्रहालय के निर्माण जैसी गतिविधियों के माध्यम से इन शहीदों को सम्मानित करने की गुहार लगाई ताकि इन सिपाहियों का बलिदान इस तरह उपेक्षित न रहे और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर शहीदों की स्मृति का हिस्सा बनाया जा सके। कुंडोस बताते हैं कि प्रयास सफल न होने की कई वजहें थीं, जिनमें सरकारी अधिकारियों की ओर से रुचि न लिया जाना, इसके लिए धन मुहैया कराने की अनिच्छा के साथ साथ कोचर और गुरुद्वारा समिति के बीच विवाद भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, हम 26वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सैनिकों की सूची हासिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार और वहाँ हमारे सहकर्मी शोधार्थियों के संपर्क में हैं। इसके साथ ही हम उनके परिवारों का पता लगाएंगे ताकि वे पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर सके। द प्रिंट बोर्ड सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में।